प्रवृत्ति और निवृत्ति वो नहीं जानते। मानो कृष्ण में प्रवृत्त होना चाहे तो कृष्ण निवृत्त होना चाहे ये जानते नहीं कि आसुर है ना आसुर, उनके प्रवृत्ति और निवृत्ति का वो मानदंड क्या होता है, किसी माप से चलते हैं तो आसुर है ना, जिससे प्राण पूर्ण पारायण हो गए पुरुष प्राणों के लिए भोगों के लिए चलते हैं तो राग पूर्वक चलते हैं। संसार में राग और द्वेष उनको लेकर चलते हैं। आसुरी प्रकृति है, दैवी प्रकृति होती है वो तो भगवान को सामने लेकर चलते हैं, और आसुरी प्रकृति वाले स्वार्थ को लेकर के संयोग जन्य सुख को लेकर के चलते हैं। तो स्वार्थ के लिए असली प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। जैसे पशु पक्षी आदि चलते हैं अपने स्वार्थ के लिए, आराम के लिए, सुख के लिए, भोग के लिए, ऐसे ही चलते हैं। पशुओं में और मनुष्यों में ये फर्क होता है कि मनुष्य पशु तो बेचारे तात्कालिक जिसमें सुख दिखता है ऐसे भोग की तरफ चलते हैं, और मनुष्य को भगवान ने विवेक शक्ति दी है जिससे ये भविष्य का विचार कर सके। तो विचार अपने और दूसरों के हित का करना चाहिए ना, वहां भविष्य में मेरे को सुख कैसे मिलेगा ऐसा विचार करते हैं, वो अधूरा ज्ञान। भविष्य में कितना प्रलयांतम उपासिता आगे लिखा है, मरे तब तक, मरने के बाद क्या होगा ये बुद्धि नहीं। पशुओं की ये बुद्धि भी नहीं है कि मरने तक हमारा क्या निर्वाह होगा, वो तत्काल जो सुख दी गए वो कर लेते हैं, अगर क्या होगा क्या नहीं कोई विचार नहीं। तो मनुष्य में अगर सोचने की जो शक्ति दी है प्रभु ने, ये शक्ति दी है इसके कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। परंतु कामोपभोग में परायण होने से इस जन्म में होने वाला सुख ही सुख दिखता है, इस जन्म के बाद में क्या होगा कैसे होगा इस बात को बिल्कुल नहीं जानते। तो प्रवृत्ति चाहे निवृत्ति जो, तो क्या मतलब कि जिससे हमारे को और दूसरों को अभी और परिणाम में सुख हो, अरे सुख ही नहीं हित हो, ऐसी भावना लेकर चलते हैं। वे देवी संपत्ति वाले होते हैं, उनमें भी अपने सुख के लिए करते हैं चेष्टा, वो देवी संपत्ति वाले नहीं होते, वो भी आसुरी वाले ही होते हैं। अपने सुख के लिए करना इतना ही नहीं, यहां से मरने के बाद हम सुख स्वर्ग का सुख लेंगे, अगर ही जन्म में धनी बनेंगे, अगर ही सुख भोग करेंगे, ऐसी इच्छा वाले भी वास्तव में देवी संपत्ति वाले नहीं है। इस वास्ते त्रैविद्या माम सोमपा पूतपापा यज्ञ रिश्वा स्वर्ग दिन प्रार्थयन्ते। वेद त्रयी के अनुसार चलने वाले यज्ञ करते हैं और स्वर्गति की स्वर्गलोक में चला जाए ऐसी इच्छा रखते हैं, और वहां जाग भोग भोगने के बाद क्षीण पुण्य मृत्यु लोक में शांति, फिर जन्म मरण में आ जाते इधर मृत्यु लोक में। तो उनकी बुद्धि भी भोगों में आसक्त रहती है, तो वे भी वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक नहीं। आप माफ करेंगे, देवी संपत्ति वाले ने, देव नाम परमात्मा की संपत्ति, जिसके बाद फिर पारा कुछ भी बाकी न रहे। मनुष्य शरीर ऐसा दिया है भगवान ने कि अपनी बुद्धि का अपने विवेक का ठीक उपयोग करे तो आखिरी लाभ हो जाए, जिसके बाद कोई लाभ नहीं, और जिसमें कोई किंचित मात्र भी कभी कष्ट आ ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला। इसकी कसौटी का एक श्लोक खास है, विशेष छठे अध्याय का 22वां श्लोक, ये खास है अपनी परीक्षा के लिए। यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर लाभ कुछ बाकी न रहे और उसमें स्थित होने पर गुरु ना भी दुखे न विचार लेते, बड़े भारी दुख से वो विचलित नहीं किया जा सकता। बड़ा भारी दुख क्या है कि अंग के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े किए जाए, जीते जागते जैसे टुकड़े किए जाए, तो भी वो उस पारमार्थिक स्थिति से विचलित नहीं होता, मानो वो दुख पहुंचता ही नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं, ऐसा महान आनंद इस शरीर के रहते रहते प्राप्त कर लेना है, उसके लिए ये मानव शरीर मिला। तो सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख ना हो, ऐसा ज्ञान इसको मिला है, ऐसी समझ मिली। परंतु काम में, भोगों में और संग्रह में लगने के कारण अधिक से अधिक विचार करेगा तो मरने तक का विचार करे, बस इतना सुख रहेगा, ऐसा आराम रहेगा, और फिर ज्यादा सोचेगा तो मेरे मरने के बाद मेरे बेटा पोता ऐसे आराम से रहेगा, मेरे परिवार के लोग ऐसे सुखी रहेंगे, बस इससे अगाड़ी उनकी बुद्धि जाती नहीं। क्यों? आसुरी संपत्ति है ना, भोगों में ही लगे रहते, ममता आसक्ति इसमें जाल में है, प्रसक्तता काबू हो गए, इच्छा और भोगों में अत्यंत आसक्त रहते, पतंती नरके असुचौ, महान घोर नरक में गिरते। तो पहले प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते नहीं, तो भाई जानते ही नहीं तो वो क्या करे बेचारे, उनका क्या दोष है, भाई जानते ही नहीं। कदे जानने के लिए तस्मात शास्त्रम प्रमाणं दे कार्याकार्य विवस्थो, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र ने क्या कहा है करने के लिए और किस बात का निषेध किया है न करने के लिए कहा है। और जो वास्तव में अनुभवी महापुरुष है उन्हें क्या करने को कहते हैं, क्या नहीं करने को कहते हैं, अथवा सात्विक वृत्ति से स्वयं एकांत में विचार करे कि क्या इन पदार्थों से, इन भोगों से, इस संग्रह से मैं सदा सुखी हो जाऊंगा, क्या ये पदार्थ, ये भोग, ये परिवार, ये संपत्ति, वैभव क्या सदा मेरे साथ रहेगा, ऐसा विचार करती तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। सीधी बात, विवेक है ये, परंतु इस विवेक को काम नहीं लेते, इस वास्ते नहीं जानते। तो न जानने का कारण इसमें जानने की शक्ति नहीं है, इस वास्ते ये नहीं जानते तो ये क्या दोषी है बेचारे, ऐसी बात नहीं। जानने की शक्ति है पर शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। सांसारिक सुख लेना और संग्रह करना, इसमें ही शक्ति को लगा दिया और इससे भी नीची शक्ति लगा दिया, दूसरों का नाश कैसे हो, दूसरों के पास में धन न जाए, हमारे पास आ जाए, हमारी महिमा हो जाए, हमारा ही आदर हो जाए, हम ही सुख पावे, दूसरे चाहे कितने दुखी हो जाए परवाह नहीं, ऐसा विचार कर लेते जो विवेक का महान दुरुपयोग है, वो जो समझ दी है उसका महान दुरुपयोग कर लेते, इस वास्ते भी नहीं जानते, उनमें जानने की शक्ति नहीं है, ये नहीं है। भाइयों बहनों, आप कान खोलकर विशेष ध्यान देकर के सुने, मानव शरीर जब मिल गया है तो आपको परमात्मा की प्राप्ति का पूरा अधिकार मिल गया है और आपके पास वो विवेक, वो समझ सबके पास है, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ हो, यहाँ की योग्यता वह काम नहीं देती, परमात्म तत्व की प्राप्ति की योग्यता सबको प्राप्त है। यहाँ सबको एक पद नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो पद मिलता है वो तो यहाँ की योग्यता के अनुसार मिलता है, और परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता परमात्मा ने पूरी दे रखी है मनुष्य मात्र को। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई ज्ञान हो, सबको भगवान ने वो शक्ति दे रखी है। इस वास्ते इस मानव शरीर की बड़ी महिमा, वो महिमा इस पुतले की नहीं है, वो महिमा है इसमें जो विवेक है उसकी। शरीर के लिए तो क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रच दिया अधम शरीरा, अधम शरीरा, इस शरीर को अधम बताया है। परंतु सबसे उत्तम मानुष देही जीव चराचर जातत देही, उत्तरकांड में कहा सबसे बढ़िया शरीर मनुष्य का है। देवता भी तो शरीर को चाहते हैं, देवता भी ऐसे ये मानव शरीर है। दुर्लभ हो मानुष हो देव, अत्यंत दुर्लभ है। तो देवताओं ने भी ये प्रार्थनीय ऐसा शरीर है तो ये ढांचे के नहीं, इसको अधम शरीर का अधम। तो फिर उत्तमता क्या है? इसमें उत्तमता है जो विवेक शक्ति है, जानने की शक्ति है, उस शक्ति की महिमा है। और उस शक्ति की ही महिमा नहीं है, उस शक्ति के सदुपयोग की महिमा है, उसका उपयोग ठीक तरह से किया जाए। अभी जो विपरीत दिशा होती है उसमें भी मानो पूर्व के पापों का फल भोगने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी उपयोग ठीक करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। सज्जनों आप ध्यान में, आप एकांत में बैठते हैं और तरह तरह का संकल्प विकल्प होता है, संसार की याद आती है, ये एक अवस्था है। इसका भी सदुपयोग किया जाए तो कल्याण हो जाए। बुखार आ गया, घाटा लग गया, मनुष्य मर गया, बीमारी आ गई, अपदस हो गया, निंदा हो गई, अपमान हो गया, इसका भी सदुपयोग किया जाए तो कल्याण होगा, मुक्ति होगा। दरिद्रता आ गई, इसका भी उपयोग किया जाए सदुपयोग तो कल्याण हो जाए। सबकी सब साधन सामग्री है, परमात्मा प्राप्ति की सामग्री है। कहते ये तो समझ में बात नहीं आती, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, मन भगवान में नहीं लग रहा है, उसका सदुपयोग कैसे लेगा? ये तो बड़ी शिकायत है, व्यापक शिकायत है। कहते भगवान में मन नहीं लगता, तो मन नहीं लगता उस समय आप उकता जाते हैं। जो उकताया हुआ आदमी होता है वो समय का सदुपयोग नहीं कर सकता, घबरा जाता है। तो क्या करे? कि धैर्य पूर्व सोचे, ये जो मेरे चिंतन हो रहा है, ये चिंतन क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, चिंतन किस रूप का हो रहा है, क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सोचे। ऐसा सोच करके और इसका सदुपयोग, सदुपयोग किया, कुछ ऐसे ऐसे मैंने काम किए हैं उनकी याद आती है, ये काम ठीक नहीं था, ऐसा काम अगर नहीं करना है, ये संस्कार बढ़ जाएंगे तो भजन में बाधा देंगे, इस वास्ते ऐसा काम नहीं करना है। अगाड़ी करना है उसकी बात याद आती है तो अगाड़ी, और कोई गड़बड़ी का काम करना है तो उसकी याद आती है, तो ऐसा खराब विचार रखना ही नहीं है तो ये याद आवेगी। अच्छा काम किया है उसकी याद आ जाए तो कि भाई वो तो काम बीत चुका, अब उसे याद करने से क्या है, वो अच्छा हुआ है, वो भगवान की कृपा से हुआ है, और उसको भगवान की अर्पण कर दे, अपने उसका फल न चाहे, ना अभिमान करे कि हमने अच्छा काम किया और ना उसकी फल की इच्छा रखे। तू आची करे सो राम जी कह सतगुरु संत, अच्छा होता है वो भगवान की कृपा से होता है, संतों की, महात्माओं की, गुरुजनों की, बड़ों की कृपा से होता है। भूना बने सो आपकी ऐसी उधार, खराब बनता है काम, वो हमारी गलती है व्यक्तिगत। अच्छाई होती है वो समष्टि की है, ध्यान देना, अच्छापन तो समष्टि की शक्ति का है और बुरापन व्यक्ति का खुद का पैदा किया हुआ है। इस वास्ते बुराई के त्याग की बात बोल जो कह दिया तुम बुरा मत करो और अच्छाई करो, क्यों अच्छाई समझती सकती है। इस वास्ते अच्छाई करते हुए आदमी को भय भी नहीं लगता। तो बुरे संकल्प विकल्प आते हैं तो बुरा काम किया है, इस वास्ते अगर ये नहीं करना है ये निश्चय कर ले तो बुरे संकल्प आकर के मिट जाएंगे, क्योंकि पुरानी चीज है साफ हो जाती, वो साफ हो जाती है। जैसे कई महीनों से बरसों से कमरा बंद है और उसमें हम रहना चाहते हैं तो खोलते तो भीतर में रेता रज्जी पड़ी हुई है, कूड़ा करकट है, उसका झाड़ू लगाओगे वो दूर करोगे, झाड़ू लगाते ही वो उड़ेगी और कमरा भर जाएगा। कहते हैं ये तो रज्जी से कमरा भर गया, पहले तो नीचे ही नीचे पड़ी थी अब तो कमरे में ही आ गई, वो आ नहीं गई है निकल रही है, वो खत्म हो रही है। ऐसे ही भगवत भजन करने से पहले पूरे संस्कार थे वे निकल रहे हैं, वो झाड़ू लग रहा है, सफाई हो रही है। इस बात से घबरे घबरावे नहीं, ना तो उनको बुरा समझे ना अच्छा समझे। अब बुरा समझने से क्या होगा, संबंध जुड़ जाएगा, अच्छा समझने से भी संबंध जुड़ जाएगा। भगवान के साथ बैर किया उनका भी कल्याण हुआ, प्रेम किया उनका भी कल्याण हुआ, और जो कुछ नहीं किया उनका कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही इन कर्मों के साथ में अच्छा करके संबंध जोड़ोगे तो भी कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाएगा, और बुरा जोड़ो तो भी जुड़ जाएगा। इस वास्ते से तटस्थ रहो, ये जो क्रिया हुई है नष्ट हो जाएगी, साथ रहने का है नहीं, अच्छा हो तो रहेगा नहीं, बुरा हो तो रहेगा नहीं। तो जो चिंतन होता है ये बड़ी शिकायत है, वो ध्यान देकर सुनना। मन में संकल्प विकल्प आते हैं वे पुराने आते हैं, अभी तो बैठो अभी तो बुरा काम नहीं कर रहे हैं कि तो अभी नहीं पुरानी बात याद आ रही है, तो पुरानी याद आ रही है अभी तो वो परिस्थिति नहीं है, अभी तो वो दशा नहीं है, अभी तो वो घटना नहीं है। और अगाड़ी की याद आती है तो अगाड़ी की भी अब घटना नहीं है, तो याद किस लिए आ रही है कि नहीं की याद आ रही है। सोचो पहले परिस्थिति थी अब नहीं है, अगाड़ी परिस्थिति होगी अब नहीं है, तो याद किसकी होगी, नहीं की। अरे नहीं जी क्या डरना है, उसे भय भी थोड़ी बात को तो नहीं है। और परमात्मा अभी भी है, पहले भी थे अगाड़ी भी रहेंगे अभी भी है, तो उस परमात्मा को याद करो, वो तो है, उस है उसको तो याद नहीं करते और नहीं है उसको पकड़ कर दुखी होते। इसको समझ ले, सदुपयोग करे इसका कि पुरानी नहीं है, इस वास्ते जो भय कौन सी है बात, भाई भाई बात ही नहीं है, यही नहीं। और अभी जो याद आता उसमें परमात्मा है, कुछ भी याद आवे, कूड़ा करकट याद आ जा तो इसमें परमात्मा है, गंगा जी गऊ याद आ जा तो इसमें परमात्मा है, अच्छी बात आ जा तो इसमें परमात्मा है, बुरी बात आ जा तो इसमें परमात्मा है। उस परमात्मा को देखने लग जाओ, निहाल हो जाओगे, ये इसका सदुपयोग है। ऐसे ही मुनाफा हुआ उसका सदुपयोग है, घाटा लग जाए उसका भी सदुपयोग है। तो मुनाफा का सदुपयोग क्या है कि भाई अच्छे पैसे पैदा हो गए तो अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगाना है, क्योंकि साथ में तो रहेगा नहीं, इसका उपयोग अच्छे से अच्छे करना है। तो उत्तम काम में लगा करके अंतःकरण को निर्मल कराना करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है। अभाव ग्रस्तों का वो हिस्सा है, भागवत में आया है, नारद जी ने पांडवों को कहा है कि भाई अपनी क्या है संसार में चीज, यावत ब्रियत जठरम तावत स्वत्वं ही रेहिना, जितने से अपना निर्वाह हो जाए, भोजन करे जितना तो अन्न पहन करके जिससे निर्वाह कर सके, जितना कपड़ा रेस्ट जितना वो मकान, अपना निर्वाह हो जाए वो तो है अपना। और अधिकम यो भी मन्ये तो अधिक जो अपना अभिमान करता है कि मेरा है, उसको बड़े कड़े शब्दों में कहा सस्ते ना चोर है, चोर चोर का, और चोर कहकर छोड़ा नहीं है, सस्ते नो दंड मर रही, उसे दंडा पड़ना चाहिए, उसको दंड होना चाहिए। तो वो हमारा नहीं है, किसका है इसका पता नहीं। तो जब कोई भूखा नंगा अभावग्रस्त आ जाए तो उसके हिस्से की चीज उसको दे दो, जितना उसका पेट भरे उसकी निर्वाह हो जाए उतना चीज उसको दे दो, क्योंकि वो तो उसका है भाई, हमारे पास अधिक है, अधिक है तो किसका है इसका पता नहीं। वो देखकर ऐसा मत समझो कि हमने दिया, तुमने क्या दिया, तुमने अपनी चीज को तो काम में ले लिया, अब जिसकी चीज थी उसी को दे दी, अब उसकी फल इच्छा करते हैं, कामना करते हैं किसका हमें फल मिले, बिल्कुल गलती की बात है। फल किस बात का, कामना किस बात की भाई, आपने अपना क्या दिया, उसी का था उसको दे दिया। तो कर्मियों की दृष्टि से संसार का है और भक्ति की दृष्टि से भगवान का है। तो तुम तभी हम वस्तु हो गए, तुम्हें वस्तु आपकी तो वस्तु आपके समर्पण है महाराज। अरे अपने घर का क्या लगता है बताइए, यहाँ जन्म के बाद आए तो जन्मते हुए धागा एक साथ में था नहीं, और जाएंगे तो लाश भी पड़ी रहेगी, और बीच में मिल गया तो बीच में लगाने के लिए मिला है, लेने के लिए और छापा मारने के लिए नहीं, अधिकार जमाने के लिए नहीं मिला है, ये तो हित करने के लिए सेवा करने के लिए मिला है, ये तो भगवान ने अवसर दिया है। दूसरों की वस्तु आपके पास आई तो इसका सदुपयोग करके अपना कल्याण कर लो, मुफ्त में चीज तो है उसकी मिलेगी, कल्याण आपका मुफ्त हो जाएगा, ये तो अवसर दिया है प्रभु ने, तो ऐसे पैसों का उपयोग करें। कहते दरिद्रता आ जाए पैसे पास में ना हो तो कि उसका सदुपयोग और तेज है, उसका बहुत बढ़िया है, सुगम है, दरिद्रता का सदुपयोग सुगम है धनवत्ता की अपेक्षा। कहते कैसे, कि धन का उपयोग करेंगे तो अभावग्रस्तों को देंगे ना, और वे कौन कौन अभावग्रस्त है, कौन कौन इसके पात्र है, कौन से कुपात्र है, ऐसा सोच करके सतपात्र को देंगे, क्योंकि सुपात्र दानाज्य धन प्रभाव करोति पुण्यम पुण्य प्रभाव स्वलोकवासी पुनर्धनाज्य पुनर्व भोगी, उनकी स्थिति होती है सुपात्र के दान देने से। तो सुपात्र कुपात्र का विचार करना पड़ेगा, और सुपात्र और कुपात्र का विचार करना युग बढ़िया चीज है क्या, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, गुण क्या है, गुण अवगुण न देखना, गुण दोष दृष्टि दोष गुण सुभ है वर्जिता, गुण क्या है, गुण है दोनों न देख, तो उपाय करोगे दोगे तो गुण और दोष पात्र कुपात्र दोनों देखना पड़ेगा, तो वो तो कुपात्र है कि नहीं, आप तो कुपात्र हो ही गए, खराब समझ इसको नहीं दे रहे, ये ठीक नहीं है इसको नहीं देंगे, अरे धन है नहीं तो क्या बात है, हमारे देने की जिम्मेवारी नहीं, ना कुपात्र सुपात्र देखना है, और देने पर भी भीतर के लोभ का त्याग करने से ही कल्याण करने वाला होगा वो दान, तो पहले से हमारे पास है नहीं तो भीतर से ही त्याग करेगा, हमारे चाहिए ही नहीं तो भीतर का त्याग मात्र ही करना पड़ेगा, ऊपर की मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, कल्याण फर्क रहेगा नहीं, कितनी सुगम बात है। तो अनुकूल परिस्थिति न मिलने पर हमारा कल्याण सुगमता से होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में अरे त्याग करते हैं लोग, स्वतः त्याग हो गया, हर्ष गया, अपने बड़े बड़े राजा महाराजा धनी सेठ हुए वो भी त्याग करके साधु बड़े सबको छोड़ा, तो हमने आप जा भी छोड़ दिया है ही नहीं, मौज होगी आनंद की बात, छोड़ना पड़ा ही नहीं, किंतु उसमें मस्त रहे प्रसन्न रहे बड़ा आनंद, कोई बाधा नहीं, जाही भी दया खे राम ताही भी दे रही है, सीताराम 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 कहिए, इस बात से दरिद्रता का भी सदुपयोग होता है, धनवत्ता का भी सदुपयोग होता है, ऐसे बीमारी आ जाए तो उसका भी सदुपयोग है, बीमारी आ जाए तो क्या होगा, तो पुराने पाप प्रदर्श हो रहे हैं, जितनी दुखदायी परिस्थिति आती है वो पुराने पापों के कारण आ रही है, जितनी हम भोग लेते उतने पाप कट जाते हैं, और सुखदायी सामग्री आती है वो पुराने पुण्य से आती है, तो पुराना पुण्य खत्म हो जाता है, अभी गफलत में हो जाते हैं, अभी अभिमान में आ जाते हैं, सुख भोग में लग जाते हैं, दो तरह का नुकसान हुआ, और आफत में सावधानी रहती है और पुराने पाप नष्ट होते हैं। तो भगवान की कृपा माने कि हमारे को परम शुद्ध पवित्र बनाने के लिए भगवान ने ये परिस्थिति भेजी है, ऐसे अगर मस्त हो जाए भगवान का भजन करे तो संपत्ति नहीं होती है, उसके भजन करने का मौका बहुत अच्छा मिलता है। हमारे परिचित ऐसे सज्जन कलकत्ता में थे, तो पहले उनके पास धन ज्यादा था नहीं, तो सत्संग में जाया करते। फिर धन हो गया अपने पास में तो सत्संग में ही नहीं जाते ऋषिकेश। बात गई भी क्या बात है, आजकल भक्त नहीं मिलता सत्संग में जाने के लिए, भक्त नहीं मिलता। क्योंकि जो अधिक धन होगा उतना काम धंधा ज्यादा होगा, जितना काम धंधा ज्यादा होगा भक्त कम मिलेगा। अरे पानी जितनी दूर में अधिक होगा कादा उतनी दूर में ज्यादा होगा ही, वो कम कैसे होगा? इस वास्ते भक्त नहीं मिलता। और धन जिसके पास में हो जाता है घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है। अगर धन नहीं है तो धन का अभिमान तो नहीं है, और मूर्खता से अभिमान तो हर एक हालत में आदमी कर सकता है। मूर्खता का भी अभिमान होता है, कभी बड़े सेठ है, सेठ सेठानी हमारे को देते हैं क्या क्या है भाई, अभिमान तो करेगा कर लेगा आदमी, पर विचार पूर्वक करेगा तो वस्तुओं का अभिमान छूटने में कठिनता होती है। भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या अभिमान करें, हमारे पास है ही नहीं। तो सावधानी की तो सब जगह आवश्यकता है, क्योंकि सबके सदुपयोग करने में तो सावधानी ही कारण है, कोई परिस्थिति थोड़ी कारण है। परिस्थिति अगर कारण होगी तो किसी की एक की मुक्ति होगी, सबकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि परिस्थिति सबकी समान होती ही नहीं। तो परिस्थिति कल्याण करने वाली नहीं, उसका उपयोग कल्याण करने वाला। ऐसे विद्या आई तो विद्या के द्वारा दूसरों का हित करो, और विद्या नहीं है तो अपने है जितने ही अपने उपकार करो, हित करो। उस पर कल्याण भी करने की, दूसरों के हित करने की जिम्मेवारी नहीं। अरे माल पर जगात लगती है, इनकम पर टैक्स लगता है, मुनाफा हुआ तो इसका कर भी दो। अरे मुनाफा ही नहीं हुआ कर किस बात का है ही नहीं, माल जगत किस जगात किस बात की। तो हमारे पास जितनी सामग्री कम है उतनी भगवान की बड़ी भारी कृपा है, और ज्यादा दे दे तो बहुत अच्छी बात, नाथ आप दे दो हम दे देंगे। बहुत कई साल हुए पहले की बात है, एक संत थे, हम दोनों ही भिक्षा मांग करके वो खाने को बैठे, भोजन करने लगे तो बंदर आ गया। अब बंदर आ गया बैठा उधर हमारे सामने, वो साधु भिक्षा पा रहे थे, तो पाते हुए बोलते हैं कि दूंगा नहीं, एक टुकड़ा ही नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, तुमने पहले कम क्यों दिया, अब मैं कैसे दे दूं? अगर तुम्हारे लेना होता तो तुम अधिक दे देते, तो मैं तुम्हारे को दे देता, अब कम दिया दूंगा नहीं। अब देखिए भगवत बुद्धि है, अब आया ठाकुर जी इस रूप से, और लेने के लिए अब दूंगा नहीं, अब नहीं दूंगा इसमें भी ठाकुर जी दूंगा नहीं, पहले आपने कम क्यों दिया बताओ, ये आपका कसूर मेरा कसूर? बोले भावना में तो कोई कमी रही नहीं, न देने पर भी भावना वही हुई। तो भाव ग्राही जनाब ने भगवान तो भावना ही ग्रहण करते। तो हम सबके प्रति भावना अच्छी लगे, अपने जो परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी ने बहुत अच्छा किया भगवान के विधान में, और वो प्रसन्न रहे आनंदित रहे, कैसी मौज की बात है। पूरे है मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, तो वो खुश कब होंगे, जो परिस्थिति आ जाए उसका सदुपयोग है वो करो। ये शिक्षा मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, औरों को आप सिखा नहीं सकते। पशु पक्षियों को ये ज्ञान दिया नहीं जा सकता कि भाई हर हाल में आप प्रसन्न रहें। तो ये बात सीखने की है, मनुष्य शरीर में ये बुद्धि है, इसी बुद्धि का इसी विवेक का ही ये महात्म्य है कि जिससे मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। नहीं तो क्या है, कमजोर शरीर है कोई बढ़िया नहीं है, हाथी है भैंसा आदि बहुत बलवान होते हैं मनुष्य से, मनुष्य में इतना बल नहीं है। सुंदरता का ही वर्णन करते हैं तो कोई मृग की उपमा देते हैं, तो किसी कोयल की उपमा देते हैं, तो किसी की कंठ मयूर की उपमा देते हैं, तो पशु पक्षी मछली आदि की उपमा देकर इसका सजावट करते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं, तो ये सुंदर काहे का है? तो इसमें कोई सामग्री बढ़िया नहीं है, परंतु बुद्धि एक विवेक ऐसा विलक्षण है कि जिससे विलक्षण से उस विवेक से ये कल्याण अपना और दुनिया का कर सकता है। परंतु उस विवेक हो कब, कि विवेक तब हो जब संसार में फंसे नहीं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनुरा जना न विदुरासुरा आसुर जन, जो जानते ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह वृत्ति लगाते ही नहीं, जानना चाहते ही नहीं, जानने की शक्ति नहीं है, ये बात नहीं, सामग्री सब है पूरी की पूरी। जब मानव शरीर जीव के कल्याण के लिए मिला तो क्या भगवान ने कल्याण की सामग्री कम दी है? क्या कृपणता की है भगवान ने? क्या और कृपणता की है तो फिर मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये कहना कैसे बन सकता है? हमारे को सामग्री नहीं दी आपने, परंतु सामग्री बहुत दी है भगवान ने। अब उसका सदुपयोग किया जाए तो संगल पिंगलों का सदुपयोग होता है, धनवत्ता का सदुपयोग होता है, निर्धनता का सदुपयोग होता है, बीमारी आदि का सदुपयोग होता है, स्वस्थता होती है, स्वस्थ है तो कीर्तन करो, जप करो, पाठ करो, शुभ सेवा करो, खटकर परिश्रम करो, और बीमारी आ गई तो कि मस्त रहो, भगवान की कृपा होगी, पाप नष्ट हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, क्यों पाप का फल भुगतेगा उतना तो पाप नष्ट हो ही जाएगा, तो जितने पाप का फल बीमारी भोग ली उतने पाप नष्ट हो जाएंगे, तो शुद्धि हो रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बालक है उसको स्नान करावे तो रोता है, बालक है तो माँ स्नान कर रोता क्यों है? माँ के तो हाथ में है और वो स्नान करा रही है, और यह रोता है तो हंसेगा कहाँ पर? बताओ, ऐसे भगवान जो हमारे भेजते हैं वो हमारे ठीक के लिए भेजते हैं, हमारे समझ में सब जगह आता है नहीं आता बात एक अलग है, जो समझ में आ सकता है अगर बुद्धि घुमाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इस वास्ते हमारे पर जो आफत आती है, जो संपत्ति आती है, जो निंदा होती है, जो स्तुति होती है, सब ठीक होती है, स्तुति होती है तो अच्छा काम हमें करना चाहिए, पर स्तुति सुनना नहीं चाहिए, पर स्तुति के लिए अच्छा नहीं करना है, नहीं तो वो नगद दाम हो जाएगी, खत्म हुआ वो प्रशंसा में कर्म हो जाए, खत्म हो जाएगा पुण्य। और निंदा होती है तो बड़ी बढ़िया बात है कि तुम्हारे पाप दूर हो रहे, बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा प्रसन्न होना चाहिए मन में कि तुम्हारी निंदा हो रही है, पापों का नाश हो रहा है, पवित्रता हमारे में आ रही है। संत तो कहते हैं मन निंदया यदि जना परितोष मेति, मेरी निंदा से अगर किसी को संतोष होता है, वो हमारी निंदा करके राजी होता है, तो नन्न प्रयत्न सुलभ हो अनुग्रहों में, मेरे पर बड़ा अनुग्रह है, उसकी बड़ी भारी कृपा है। अरे दूसरों के राजी करने के लिए मनुष्य कठिन से कमाया हुआ धन भी खर्च कर देते हैं कि दूसरे राजी हो जाए, अरे हमारा पाप खर्च होता है वे राजी हो जाए, कितनी मौज की बात है। निंदा करने से हमारा तो पाप खत्म होते हैं और वो हो जाता राजी, हमारे कुछ जोर पड़ता ही नहीं। तो दुखार्जिता अन्य भी धनानि परित्यजन्ति, क्लेश पूर्वक कमाए हुए धन का भी परित्याग करते हैं दूसरों की प्रसन्नता के लिए, और वो अपमान करके निंदा करके और राजी हो जाए तो उसमें बड़ी खुशी मनाने की मौज हो गई, हमारे तो पाप ने सुहा रही है, इतना उपकार हो गया, इतना राजी हो गए, सबकी प्रसन्नता। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो दूसरों का हित कैसे हो? ते प्राप्त मंदी मामे वस्तरो बुद्धि ते रता, प्राणी मात्र के हित में रतो। तो कहते वो तो निंदा करता है, बेचारा अपना अहित कर रहा है, तो अहित करता है तो उसको सोचो, चरणों में गिरो, उपकार करो कि आप जो कहो सो मैं करने को तैयार, आप क्यों गुस्से करो, किस किसी तरह से उसको शांति कैसे मिले, और भगवान से माफी मांगो कि नाथ अवगुण तो है मेरे, पाप है मेरे, और ये बेचारा मुफ्त में पापी बन रहा है, कृपा करो नाथ ये पाप पापी न बने, क्षमा करो भगवान जी, क्षमा बने उसके हित के लिए। तो कैसी बढ़िया परिस्थिति है, भगवान का विधान है वो बहुत मंगलमय, परंतु तो आसुरी प्रकृति वाले जानते नहीं, प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना दुरा जानते नहीं, क्योंकि ये प्राण पोषण परायण है, भोगों के भोगने में लगे हुए है ना, जब भोगों को भोगता है आदमी उस समय उसको होश नहीं रहता है, संसार क्षण भोगरे नाशवान है, पर भोग भोगते समय क्षण भोगरे नाशवान ये समझ में नहीं आती, अरे नाशवान पीछे तो सुख भोग ही नहीं सकेगा, दोनों बात साथ में नहीं रहती। इस वास्ते हमने पुस्तक में पढ़ा है कि जो भोग भोगता है वो तो पाप करता ही है, पाप से बच सकता ही नहीं, वो प्रमादी है, प्रमाद से बच सकता ही नहीं, प्रमादो अनवधान असावधानी है, असावधानी पर सुख कैसे भोगेगा, सुख कैसे भोगेगा, भजन स्मरण करेगा, आध्यात्मिक उन्नति करेगा तो प्रमाद को लेकर दोष लेकर के भोग भोगता है, तो वो बेचारा काहे के सुखी है, वो तो दुखी है, उस पर तो दया आनी चाहिए, संत महात्मा लोग तो दया करते हैं, जो भोगों में लगा है, पापों में लगा है, उन पर कृपा करते हैं संत, चैतन्य महागुरु ने कहा भाई ये जितने पढ़े लिखे इन पर कृपा करो, जितने ये धनवान है इन पर कृपा करो, जितने दुराचारी जगाई मधाई आदि गए इन पर कृपा करो, विशेष कृपा करो, ये कृपा के पात्र है। धनी आदमी है ना वो मतवाला होता है, उसको पता नहीं है, इस बात से उन पर कृपा करो। संत लोगों के हृदय में दया आती है कि बेचारों की दशा क्या होगी, पुराने पुण्यों के कारण से पुण्यात्मा होने से धनी बन गए, अब धनी बनकर अभिमान करते हैं तो क्या दशा होगी, दुम्बो दर्पो अभिमान से आंसू संपत्ति आ गई, तो वे तो कृपा के पात्र हैं। इस वास्ते कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी अनिष्ट करने वाली है ही नहीं, उसका सदुपयोग करें। और आपकी वृत्ति सदुपयोग करने की आ जाएगी तो ये विद्या जरूर आ जाएगी। सरकार कितने ही महाराज तरह तरह के कानून बनाते हैं, परंतु तो आप लोग उसमें बुद्धि लगा करके बस ही जाते हो, निकल ही जाते हो किसी न किसी तरह से, तो बुद्धि तो आप में है ही। अब सुख दुख कैसा ही आओ उसे निकल करके अपना कल्याण कर लो, बुद्धि नहीं हो तो कैसे बचते बताइए। वो तरह तरह के सोचते चले जाते हैं और आप भी उसे बस निकाल ही लेते हैं किसी न किसी रास्ता। तो बुद्धि तो भगवान ने दी है, पर वो बुद्धि ऊंधी चले, उसमें झूठ कपट बेईमानी से कैसे करें, बेईमानी से कैसे हो जाए। अरे बेईमानी क्यों है, ईमानदारी ही सोचो भाई। ईमानदारी से हम कैसे बच सकते हैं, सत्यता को हम कैसे पालन कर सकते हैं। वो झूठ करे तो उसे झूठ और अधिक करेंगे, तो ये पतन की रस्ते जा रहे हैं। तो झूठ बोलने का तरह तरह का तरीका आपको आता है तो सच बोलने का तरीका आपके बंद हो गया क्या, उसमें बुद्धि काम नहीं करेगी। और नीयत शुद्ध हो तो मतलब करे, आज भी प्रगत हो जानते ही नहीं बेचारे, करना जानते ही नहीं। विश्वास से प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनारण विदुरासुरा न शौचम। अब शुद्धि क्या जाने, अशुद्ध बुद्धि भीतर से हो गई तो शुद्धि को क्या जानेंगे, सफाई को जान लेंगे, शोकिनी को जान लेंगे। शुद्धि क्या होती है, निर्मलता क्या होती है, खाने पीने में बैठने उठने में कपड़ों में गहनों में इनमें भी शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। जितना जितना दूसरों को शुद्ध कर दिया जाए, निर्मल कर दिया जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। संतों से सुनी है कि गंदी नाली भी साफ की जाए उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। बाहर से गंदगी दूर करने से भीतर की गंदगी दूर हो जाएगी। हित कैसे हो, सबका सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका हित कैसे हो, सबको नियोग सब कैसे हो जाए, ऐसे भाव चिंतन होता है ना तो उसका कल्याण हो ही जाता है। दूसरों को सुख पहुंचा सके न पहुंचा सके हाथ की बात नहीं है, पर अपनी नियत ठीक होने से हमारा कल्याण भी संदेह नहीं। इस वास्ते अच्छे से अच्छा आचरण करें, अच्छे से अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि हम जानते ही नहीं, हम इतने पढ़े लिखे ही नहीं है, हम अच्छा बर्ताव जानते ही नहीं क्या करें, क्योंकि ये बात नहीं। अच्छा बर्ताव नहीं जानते तो लोग कहते इसने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो अच्छा बर्ताव अब जानते नहीं तो कैसे कह दिया कि हमारा अच्छा बर्ताव नहीं किया। जानते तो हैं, विद्या भी याद है। कई लोग कहते हैं कि सत्संग में तुम जाते हो ना तुम्हारे पाप ज्यादा लगेगा, कहते क्यों लगेगा, तुम सत्संग में जाते हो और बातें जानते हो और जानते हो और पीछे करते नहीं, इस बात से पाप लगेगा अधिक। हम सत्संग में जाते ही नहीं जानते ही नहीं तो हमारे को लगेगा पाप कम, तो हम जानकार नहीं है। और जानकार से पाप लगता, हाँ जानकारी तुमने कर ली अधिक लगेगा पाप, तो हम तो जानकार पाप पुण्य का करते हैं, आप तो सत्संग करने और न करने वालों को भी जानते हैं। अगर जानने से पाप लगेगा आपको डबल लगेगा, क्योंकि सत्संग करने वाले पापी ज्यादा होते हैं और ये कम होते हैं, तो जानकारी ये क्या है, ये तुम्हारे को अधिक पाप लगेगा। तो आप पापों को नहीं जानते तो कैसे हमारे पाप का आपने निर्णय कर लिया, तो हमारे को लगेगा कि तो आपको पहले लगेगा, जानकारी तो हमारी भी आपके पास है, आप तो सत्संगी हो गुरु हो तो जानकारी पाप आप कैसे बच जाओगे। ऐसे भैया ताला किसी काम नहीं चलेगा, सीधा सरल होना पड़ेगा। इस बात से जितना जाने उतना माने उतना करे, उसका सदुपयोग करे। निर्णय कर देते हम सत्संग ही नहीं कर लेते, मानो बहादुर ही करते, बड़ा भारी काम कर लिया। अरे सत्संग करने वाले पाप छूटेगा तो सही, उनके न करने का अभिमान हो गया उसका तो कभी ठिकाना ही नहीं है, सुधार हो जाए ये ठिकाने नहीं, कैसे सुधार को बताई, उनके साथ बात ही नहीं आ गई। विश्वास से अच्छे काम में लगने वाले न लगने वालों की अपेक्षा कितने अच्छे हैं, परंतु ये बात जरूर है कि हम पूरे नहीं लगते तब तक हमें शर्म आनी चाहिए कि हम सत्संग करने वाले ऐसे हो गए। कई जगह सत्संग न करने वाले हमारे से अच्छे हैं, तो उनका गुण मानना चाहिए और हमारे वो चेतावे कि तुम अधिक पाप करते हो। भैया हाँ चेताओ भैया, बड़ी अच्छी बात, हमें चेत मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी उत्तम बात है। इस वास्ते ऐसे श्लोक भी आते हैं कि जो गुरुजन होते हैं ना, हमारे गुरुजन माता पिता गुरु आचार्य जो हमारे हितेशी होते हैं, वे तो कहीं चूक जाते हैं हमारे अवगुणों के देखने में और चेताने में, कहीं भूल जाते हैं, परंतु तो हमारे से खटपट रखने वाले तो भूलते ही हरदम सावधान रहते, ये है तेरे में ये खराबी, तेरे में ये खराबी। तो वे तो गुरुजनों से भी श्रेष्ठ। यदा यदा मे विततिं भजन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। इस वास्ते जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव, हमारे साथ द्वेष रखने वाले सदा जीते रहे, ये साम प्रसाद सुविचक्षण हो हम, जिनकी कृपा से मैं चतुर हो गया, मेरे को शिक्षा मिलेगी। यदा यदा मे विकृति भजन्ते, जब जब मेरी विकृति का उनको ज्ञान होता है गड़बड़ी करी, तदा तदा मां प्रतिबोध, देख देख तू ऐसा करता, तू ऐसा करता, तू ऐसा करता। विश्वास में ऐसे लोग हो उनके तो चरणों में गिरना चाहिए, उपकार मानना चाहिए। वे तो हमारे गुरु से भी बढ़ करके है, जो चेता दे गुरु क्या है, उकारस्थ अंधकारस्थ और उकारस्थ अंधरोधकृत, जो अंधकार हमारा दूर करके प्रकाश दे दे वो गुरु, तो ये अंधकार दूर करते हैं प्रकाश देते हैं। विश्वास के गुरु से अपना ठीक मानना चाहिए। तो देवी संपत्ति वाले के लिए हरेक परिस्थिति हरेक व्यक्ति हरेक घटना आनंद देने वाली परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली होती। विश्वास एक बात होगा सदुपयोग करें उस परमात्मा प्राप्त करें, न शोचम ना विचार न सत्यम देश विद्यते, उनमें सत्य है ही नहीं, सत्य बोलते ही नहीं, सत्य पालन करते ही नहीं, भाव भी सत्य नहीं, असत्य महाप्रतिष्ठे जगत आरण संसार को ही असत्य कहते हैं, अप्रतिष्ठित है, ईश्वरी सुकोष नहीं, धर्म वर्म कुछ नहीं, सब कुछ खत्म कर देते। एक संत थे, उनके सामने ऐसी बात आई, तेरे धर्म भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, परलोक भी नहीं है, पाप पुण्य भी नहीं है, और वर्ण धर्म नहीं, आश्रम धर्म नहीं है, ये सब धर्म धर्म है ही नहीं। तो संत बोले कि देख तेरी एक की बात मानेंगे तो कितनों को रद्दी करना पड़ेगा, और तेरे एक को रद्दी करने तो सब हमारा व्यवस्था ठीक रह जाएगी। लाघव है इसमें, तेरे को ही रद्दी मान लेंगे तो हमारी व्यवस्था बरोबर पूरी ठीक रहेगी, और तेरे को एक को माने तो कितनी व्यवस्था घटानी पड़ेगी हमें। तो गौरव और लाघव देखा जाए तो हमें लाघव किसी बात में नहीं माने। शास्त्रों ने कहा है भाई, तस्मात शास्त्रम प्रमाणं ते कार्यकार्य विवक्षितो, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्ध एव सः। ये तो आँख है, ये नहीं रंधा है बेचारा, क्या जाने। तो अंधा होता है नहीं जानता है, उसको तो सूझ मिल जाने से जानने लगता है, पर तो जानता है जान करके औन करता है, उसको कोई नहीं सुझा सकता। अरे नींद में सोते को तो जगा दे, पर जगता हुआ सोता उसको कैसे जगा, तो उसी मुश्किल होती। इस वास्ते सज्जनों ये मौका बड़ा सुंदर मिला है, ये आश्रम संपत्ति का वर्णन आया है, इसका तात्पर्य है हम सावधान रहे हैं, जिसमें अभी आग कलयुग है और भोग प्रधान नगरी में रहने वाले इनको विशेष सावधान रहना है। यहाँ तो काजल की कोठरी में कैसा ही सयाना हो, काजल की एक रेख लागे पर लागे है, काजल की कोठरी कहीं की लगी जाए, सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। अरे ऐसी जगह सावधान रहे तो और जगह तो पहुंच जाएगी, आनंद आनंद रहेगा। अरे समुदाय में भजन करता है एकांत भजन हो ही जाएगा, ऐसी गड़बड़ी में भी अपना साधन ठीक समझाता है तो एकांत में पवित्र देशों में जाकर तो बहुत बड़ा तेजी साधन कर लेगा, और पवित्र देशों में रहकर एकांत कर भजन करने वाला ऐसे आ जाए समाप्त हो जाएगी तो हमारा साधन बड़ा तेज हो सकता है। इस बात की परिस्थिति जो आती है हमारे विरुद्ध उसमें घबराना नहीं, भगवान हमारे पकाने के लिए भेज, परिपक्व बना दे हमारे को, शुद्ध बना दे, नहीं तुम ऐसे बढ़ जाओ श्रेष्ठ तो कहीं भी जाओ तुम मौज में रहोगे। एक पंडित जी कह रहे थे काशी के, मैं बाहर गया तो ये बेचारे झोंपड़ी में रहने वाले रात दिन खट करके काम करने वाले उनके बच्चे को देखा तो महाराज खाद कर को सुलाया हुआ है, तेल लगा दिया और घाम में पड़ा है। तो कहते हैं कि मैंने कह रही ये बच्चे को तेल लगा कर घाम में रख दिया, तेल तो बहुत जलाता है ना, सारे के बोलते दया करो तो बाबा दया है, ये बड़ा होकर काम कैसे करेगा, खेत में काम करना पड़ेगा, तो अभी ये पक जाएगा तो कोई परवाह नहीं, फिर उम्र में काम ठीक करेगा। अब बताइए, छोटा बालक तेल लगा करके गांव में सुला दिया, तो ये बचपन से ही पक जाते हैं, महाराज उन्हें क्या बता लगे। ऐसे सब समुदाय में सब तरह की परिस्थिति में रहते हुए अपना भजन स्मरण ठीक तरह से कर रहे हैं तो आप तो पक जाओगे, बड़ी बढ़िया बात हो जाएगी। इस वास्ते भगवान ने परिस्थिति भेजी है हमारे को परिपक्व बनाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, ऐसा संयोग रचा है, ऐसी परिस्थिति भेजी है, इस वास्ते भगवान ने किया वो ठीक किया है। ऐसे अगर भगवान की कृपा मानते रहे तो हम तो घबरा जाते हैं, तो घबरा के भगवान ने कह दो कि नाथ आप ऐसी सद्बुद्धि दो जिसे ऐसी परिस्थिति में हम आपका भजन कर सके, ऐसे प्रभु से मांगो तो प्रभु सद्बुद्धि देने को तैयार, और सद्बुद्धि देते हैं आप उसको स्वीकार कर, थोड़े महाराज बहुत कृपा करी, अब देखो फिर भगवान की कृपा आती है जोर से। निरादर करने से कृपा का प्रवाह रुकता है, आप भगवान के हाँ में हाँ मिलाकर देखिए फिर कृपा आती है जोर से, बुद्धि बहुत विकसित होती है, साफ स्वच्छ निर्मल बुद्धि हो जाती है, क्योंकि आसुरी प्रकृति नहीं है, देवी संपत्ति मोक्ष आए, भगवान के चरणों का आश्रय लेते देवी संपत्ति आती, तो उनमें न सत्यम देश देते उनमें सत्य नहीं होता। तो ये खाका बड़ा सुंदर खेचा,
मेरे रस का सारथ्य हो सकेगा नहीं, आप शस्त्र नहीं लेंगे कोई जरूरत नहीं। तो कृष्ण की वो प्रतिज्ञा थी और इनकी भी ये प्रतिज्ञा थी। अब शाम को बलराम आए और उनने सुना, कह दिया किसी ने, क्योंकि सेनापति थे वो, उनने कहा महाराज आज रण का निमंत्रण देने के लिए दो व्यक्ति आए थे यहाँ, कौन कौन, अर्जुन और दुर्योधन। अच्छा तो फिर क्या हुआ, तो ये महाराज जाने, अब उनने क्या कहा ये मुझे हम लोगों को नहीं मालूम है, हमें इतना ही मालूम है कि दोनों आए थे
तमसावृता, तमोस में आवृत होकर के उनकी बुद्धि क्या है, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मानती है, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पारतामसी, सब विपरीत दिखता है उनको, उल्टा दिखता है वो तामसी बुद्धि है। तो ऐसा क्या करे, क्या क्या भगवान को पुकारे, अरे भगवान सब जगह तैयार है, सबके लिए तैयार है, समोहम सर्वभूतेषु नवेद्वेषु अस्ति न प्रिया, पापी से पापी भी भगवान को अप्रिय नहीं है। बच्चा उद्दंडता करता है, माँ का कहना नहीं करता, घर में तोड़ फोड़ करता है तो माँ गुस्सा करती है पर अहित नहीं करती, कभी उसका हित हो सही करेगी। तो प्रभु तो महाराज स्वर्गम सर्वभूता नाम प्राणी माता जी तुम्हें वो माता सबकी माँ है, क्या वो कहीं अहित कर सकती है, हमारे को दंड देती है ना, उसमें भी माँ की कृपा है, क्रोधोष देवस्य भरेण तुझे, वो तो वरदान होता। इस वास्ते आसुरी प्रकृति वाले न सत्यं ते असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगदाहु रणेश्वरम, असत्यम अप्रतिष्ठं, ये जगत है ये असत्य है, क्योंकि असत्य तो वेदांती भी कहते, वे भी कहते जगत असत्य है, अरे असत्यम अप्रतिष्ठं नहीं कहते, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई आश्रय नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है, और जगदाहुर अनीश्वरम ईश्वर नहीं है, ऐसे आसुरी संपत्ति वाले होते ईश्वर ईश्वर कुछ है ही नहीं, क्या कहते हैं हमने नहीं देखा, अरे तुमने नहीं देखा तो ईश्वर का अभाव हो गया,
लोलूको प्यवलोकते यदि देवा सूर्य से किंग दूषणम, वो लोक है वो सूरज को नहीं देखता तो सूर्य का दोष है क्या उसमें? अब सूर्य क्या करे, वो सूर्य के प्रकाश से उसकी आंख मिस जाती है बेचारी, वो देख सकता नहीं, रात्रि आवाज वो देखने लगता है। तो ये प्रकृति और माया है परमात्मा की, इसकी तरफ जब रुचि वृत्ति हो जाती है खाना पीना संग्रह करने में तो उनकी बुद्धि रुक जाती है। उल्लू है बिल्ली है, इनको देखा है बिल्ली की आंख, देखो आप बिल्ली की आंख मुंह की तरह उल्लू का मुख और आंख होती है ऐसी हमने देखा है। तो वो जो जो सूर्य उदय आता है वो आंख ऐसा पड़ता है ऐसे हो जाती है, रेखा सी रहती है थोड़ी सी रेखा, आंखों में दिखना नहीं साफ नहीं दिखता। रात्रि में बिल्ली को कुत्ते को सिंह को रात्रि में दिखता है, उल्लू को भी रात में दिखता है क्योंकि बाहर से प्रकाश नहीं अंधेरा आता तो पुतली खुल जाती है ऐसे ऐसे, और वो बाहर से प्रकाश आते ऐसे बंद हो जाते। इस वास्ते माया में लगे हुए आदमियों की वो दृष्टि बंद हो जाती है। वो तो परवशता है बिचारों की बुद्धि ठीक नहीं, ये तो जान करके उसे पड़ते फंसते है ना। अगर ये बुद्धि का विकास है तो दुनिया का कल्याण करे ऐसी शक्ति मनुष्य मात्र में आ सकती है। अपना कल्याण कौन बड़ी बात है, क्योंकि ये विवेक भगवान ने दे रखा है, सबको दी है शक्ति, इसी से ही मनुष्य की महिमा है। इससे अपना कल्याण दुनिया का कल्याण कर सकता है। असत्य मां प्रतिष्ठन दे जगदाहुरनेश्वरम, जगत का कोई ईश्वर नहीं कोई मालिक नहीं। कहते मालिक नहीं है तो इसका संचालन कैसा होता है, संसार उत्पन्न कैसे होता है, कहा परस्पर संभूतम स्त्री पुरुष मिले संसार हुआ, ऐसे पांच भूत मिले संसार हुआ बस अपरस्पर संभूतम। कहते कोई हेतु होगा कोई कर्म होगा किम अन्यत के और क्या, काम हेतु कम कामना होती है एक एक कामना, कामना अगर संभव तो संभवता संबंध होने से पैदा हो जाते हैं अगारी बस। एकांत दृष्टि मौसी ये दृष्टि बताई, यहां तक आश्रम संपत्ति वालों की दृष्टि बताई, दृष्टि इस दृष्टि से देख रहे वो उल्लू की दृष्टि से। अब उल्लू की दृष्टि से वैसे ही दी जाएगा जैसे उल्लू को दी है। एक कहानी आती है कि हंस था वो उड़ते उड़ते रात्रि में एक बड़ वृक्ष के ऊपर ठहरा, बरगद का वृक्ष था बड़ा, उस पर ठहर गया भाई रात्रि हो गई, उस पर 100 उल्लू रहते थे। अब सूर्य सुबह हल्ला करने लगे, हंसने कह रहे क्या करते हो, ये क्या करते हैं, तो हल्ला क्यों करते हो, क्या करते हैं, तो इधर कहाँ गए थे, इधर तो अंधेरा था। अरे अभी तो अंधेरा अब हुआ है, ये अंधेरा है ये प्रकाश हुआ। हर्ष कहता है अरे अंधेरा है अंधेरा, कहते तू अकेला कहता है अंधेरा, हम इतने देर 100 है, 100 के 100 ही उल्लू, अब उनको कौन मना करे बताइए। नाचने हल्ला करने लगे, अरे चुप बैठ जाओ, रात्रि रात्रि क्या होता है, जिसमें दिखता नहीं वो रात्रि होती, तो रात्रि तो पहले थी अभी तो दिखता है ठीक तरह से। कि तुम एक ही जाति के हो इस बात तुम्हारे का शादी होता है, तो महाराज चमगादड़ ले आए, कहो भाई एक आया है पक्षी वो कहता है कि तो रात है चलो, तो वो आया वो कहता वाह प्रकाश तो अभी हुआ है, हम तो परिवार से तभी निकले बाहर, तो तुम भी ऐसे ही ऐसे कैसे ये दूसरी जाति का चमचेर ले आए और कोसरी ले आए, अब वहां तो कोई मिलेगी तो रात्रि फिरेंगे, अब दिन वाले कैसे मिलेगी उनको, वही वे मिले जो हाँ ठीक है। सबने मिल करके बेचारे हंसो चुप कर दिया, बोट में गिर गया, उसको बोट एक नहीं मिली। अब उसको बोट देने वाले तो दिन में रह गए, अब आ गया रात्रि में, अब रात्रि वाले की बोट ज्यादा हो गया। इस तरह से लोग तो कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, बस खाना कमाना और क्या बात है, बस मौज करना है और कोई संसार में कुछ नहीं है। कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, एता दृष्टि में अवस्तव्य, ये दृष्टि बताइए आपको। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना वीरासुरा न सत्यम न शोचम न विचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनेश्वरम अपरस्पर संभूतं किमपि काम हेतु, एता दृष्टि में अवस्तव्य। अब इष्टि होगी, दृष्टि को धारण किया, ये अपना विवेक हुआ, उल्टी हुआ। नष्टात्मान अपने पतन की तरफ चले गए, और नष्ट बुद्धि भी दृष्ट हो गई, अपने आप पतन हो गया, ऊंधी तरफ चल पड़े। अल्प बुद्ध प्रभु उग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता अहिता जगत क्षयाय प्रभवंत। वे सबके शत्रु जगत का नाश करने के लिए प्रभुता होती, उनमें जो सामर्थ्य होती है दूसरों को नाश करने के लिए, क्षयाय प्रभवंती। प्रभु सामर्थ्य अर्थ होता है, तो सामर्थ्य किसके में होता है? प्रभु विनाश आए नष्ट करने के लिए, बल आया तो विद्या विवाद आय, धनंग मदाय, शक्ति परेशान परिपीड़न आय। विद्या होगी तो विवाद के लिए आप कितने पढ़े हो, क्या जानते हो? आओ दो बात करो हमारे पता लगे। धन मदाया, धन होता घमंड के लिए, इतने बैठे कितने है ये मेरे समान, कौन जो सी सुनी सोमया, देखा आपने कोई मेरे समान? आज जो अभिजनवान उसमें मैं धनवान हूं, अभिजनवान हूं। एक आज देते 20 आदमी बोलते हैं हमारे, इकला देख लिया क्या आपने? उग्र कर्माण बड़ा घोर कर्म कर, क्षया जग तो हिता काम आश्रित दुष्परम। कि वे किसी का आश्रय लेते हैं, आश्रय कामना का लेते हैं, भगवान जैसे माम आश्रित यतन थे, भगवान का आश्रय नहीं, वो काम आश्रित है, कामना है तो उसका ही आश्रय, उसका ही इतना धन और हो जाएगा, इतना और कमा लेंगे, इतना वहां से ले लेंगे। काम आश्रित दुष्पोरम, अरे काम भी कैसा दुष्पूर, ठीक से क्या दुष्पूर है ना, अनल है ना सर, ये दुष्पूर अनल है काम। इच्छा होती है ना भोगों की, संग्रह की, सुख भोगने की इच्छा, ये अग्नि है अनल 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 न अलम विद्यति, इसी अलम नहीं होता ना अग्नि से तृप्त कास्ता ना नापगा नाम हो दी, ये काष्ठा से तृप्त नहीं होती, काट जो डालो आहुति आहुति दे जाओ, सहती सहती चाहे जैसी बढ़ती है। दुष्पूरे अनल ए रच वो काम, काम आश्रित दुष्पूरम दम्भ मान वदान्विता। लोगों में दिखावटी धर्म करेंगे, दिखावटी काम करेंगे, सबको लोग देखे, लोग समझेंगे हाँ ये भी कुछ है ऐसा, अभी तो बुरु काम करेंगे, लोगों में अपनी प्रसिद्धि के लिए काम करेंगे। धर्मात्मा भी लोग समझ ले हम हुए चाहे न हों, धर्म तो आस्था ही नहीं है कैसे होंगे, लोग अच्छा समझ ले बस, तो विधिपूर्वक नहीं काम करेंगे, दम्भ से पाखंड से करेंगे। काम आश्रित दुष्पूरम दम्भ मान मदान्विता, और मान हमारा कितना सम्मान है, मद अपने में घमंड है कि हम कैसे बड़े हैं, कितना हम जानते हैं, कितने समझदार हैं। तो काम राग बलान्विता दम्भान्विता, दम्भ कर दम्भ सहित है। काम राग मोहादि तो असद ग्रहण, अब वो ने ग्रहण किया जो मूर्ता के कारण से पकड़ लिया अपना जिद, तो जिद क्या पकड़ लिया कि व्रत करेंगे नियम करेंगे तो भी मूर्ता से धारण कर, ऐसा हमारा नियम है। हमने डाकुओं की बात सुनी है, कोई सज्जन थे उनके पास डाकू आए लूटने के लिए, तो कह रहे भाई मारने के लिए उन्होंने कहा जाए तू ले जाओ ये धन ले जाओ मारते क्यों, कि रंबामन थोड़ी ऐसे परिमेयांत प्रलयांता मुबाशता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। अपरिमेय चिंता रहती है, चिंता का मान तोल नहीं होता, कितनी चिंता है। आज भी संपत्ति वाले काम का आश्रय लेकर काम करते हैं, मानो इच्छा का आश्रय लेते हैं। गीता में काम आश्रित दुष्पूरम दम्भ मान मदान्विता, यहां काम आश्रित लिखा है, और महात्मा ने उसको माम पढ़ता देवी प्रकृति माश्रिता, और भगवान के भक्तों देवी प्रकृति का आश्रय लेते, और जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित यतंती है, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर कर्म करते हैं, और जो विवेक प्रधान चलते हैं, जो कर्मयोग हो चाहे ज्ञान योग हो, तो वो अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करती है, तो कर्मी भी अनाश्रित कर्म फल, कर्म फल का आश्रय नहीं लेते, और नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी नहीं विकिंचित करोति स, तो कर्मयोगी भी नित्य तृप्तो निराश्रय रहते, तो निराश्रय है, मदाश्रय है, माम आश्रित्य है, देवी प्रकृति में आश्रिता है, काम आश्रित दुष्पूरम, तो आश्रित प्रकृति वाले काम आश्रित्य दुष्पूरम, दुष्पूर काम का आश्रय ले, अब अंत कैसे आ गए उनका, पहले तीसरे अध्याय में कहा है कि दुष्पूर ये अनले न, ये दुष्पूर आग है, आग अग्नि में तो जो देते चले जाओ क्यों ही वो बढ़ती चली जाएगी, देते न जातु कामक कामाना उपभोग न सहमति, कामनाओं के उपभोग से मान पदार्थों के भोग से कामना मिटती नहीं, अभिशाकृष्ण वर्त में वजह से आग होती है, वो जैसे जैसे सहे वैसे वैसे आहुत देते जाओ, जैसे वो आग मांगती रहे वैसे घी की आहुति देते जाओ तो बढ़ेगी मिटेगी नहीं, ऐसे इच्छा के अनुसार भोग भोगते चले जाओ, भोगों की इच्छा मिटेगी नहीं बढ़ेगी, तो दुष्पूर है ये, इनके द्वारा पूर्ति नहीं होती, इस वास्ते तीसरे अध्याय में जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, दुरासदम काम रूपम शत्रु जही, इसको मार दे, तो मारने की आज्ञा दी, इसका त्याग करना होगा, संसार की इच्छाओं का अंत नहीं होता, एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि परमात्मा अनंत है पर अनंत की इच्छा है वो शांत हो जाती, और संसार अनित्य है शांत है परंतु इच्छा अनंत होती, इसकी इच्छा मिटती नहीं, ये विचित्र बात है, इस बार इच्छा बनती ही रहती है, क्योंकि मिट जाए एक पूरी हुई फिर बन जाती पूरी हुई, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो जो लोभ होगा पूरी होगा जो जो अधिक अधिक लोभ होगा, तो ये बढ़ती है, क्यों बढ़ती है कि ये इच्छा वास्तव में त्याग करने की है, मनुष्य की जो इच्छा होती है इस इच्छा का त्याग करना चाहिए, और परमात्म तत्व की इच्छा हो इसको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा की इच्छा है वो पूरी होगी, कभी होगी तो पूरी होगी, नहीं तो ये मिटेगी कभी नहीं, मिटने की है ही नहीं, तो परमात्मा नित्य है, जीव नित्य है, इसकी इच्छा है परमात्मा विषय की, ये नित्य है दोनों, तो इसकी इच्छा नित्य रहेगी, ये तो क्या होगा कि पूरी हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति होने के बाद फिर इच्छा जगेगी नहीं, वो तो पूरी हो जाएगी, और संसार की इच्छा है तो ये रखने वाला है नित्य, संसार है अनित्य, वो मिटता रहे पदार्थ इच्छा बलती रहेगी, इच्छा तो बनी रहेगी, पदार्थ मिटते रहेंगे, व्यक्तियां मिटते रहेगी, परिस्थिति मिटती रहेगी, क्रिया सब पदार्थ भोग सब मिटते रहेंगे, और इच्छा बढ़ती रहेगी, भीतर बढ़ती रहेगी, इसका क्या अंत आवे, तो वो बढ़ती रहेगी, इसका कारण क्या है कि ये इच्छा करने वाला नित्य है, इस वास्ते ये इच्छा मिटती नहीं, अरे अगर ये नित्य नहीं है इस वास्ते मिटती नहीं, अरे परमात्मा तत्व नित्य है इस वास्ते उसकी इच्छा पूरी होती, पूरी हो जाती फिर बेचारी इच्छा पैदा ही नहीं होती, और वो परमात्मा की इच्छा है वो भी वास्तव में संसार की इच्छा के होने से ही है, संसार की इच्छा सर्वथा मिट जाए तो वो पूरी उसी से हो जाए, कि जहां वो है वहां परमात्मा है ही, संसार की इच्छा त्याग किया अगर संसार के विमुख हुआ, संसार की इच्छा से ही संसार के सन्मुख होता है, इसका त्याग करते ही संसार से विमुख हुआ, और संसार से विमुख होते ही भगवान की प्राप्ति होती, सन्मुख हो गया भगवान के, जहां है वहां परमात्मा है ही, संसार के सन्मुख होना क्या है, संसार को चाहना, इसे हमें सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, मान मिलेगा, भोग मिलेगा, संग्रह मिलेगा, ये मिलेगा मिलेगा इच्छा है ना, ये संसार के सन्मुख होना है, और संसार से लेना है ही नहीं और देना ही देना है, कि इतने वर्षों तक इसी उम्र में जो हमने लिया है संसार से, तो इसकी सेवा कर देना भाई, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, अधिकार से, योग्यता से, कोई पद मिल गया तो उससे भी संसार की सेवा कर देना है, क्योंकि कर्जा लिया हुआ है तो वो दे देना है, चुका देना है, और कर्जा लेना है नहीं, और नहीं तो फिर ये लेना चलेगा ही। इस वास्ते इसे लेने की इच्छा का त्याग कर इनकी सेवा करना, संसार की तो सेवा करना देना है, लेने की इच्छा सदा के लिए छोड़ दे। ध्यान देना, मनुष्य की बहुत बड़ी एक भूल होती है, जिसको क्या कहें, भूल कहें, गलती कहें, मूर्खता कहें, अज्ञान कहें, उसे क्या नाम धरे वो तो आप जाने। जहां जाता वहां से मेरे से मिल, मेरे को मिल जाए, बस माँ बाप से मिल जाए, स्त्री पुत्र से मिल जाए, पति पुत्र से मिल जाए, भाइयों से मिल जाए, देवजेठ से मिल जाए, नंद भजाई से मिल जाए, मिल जाए, मेरे को मिल जाए, पड़ोसी से भी मिल जाए, संत महात्मा को जाओ वहां से मिल जाए, महात्मा कोई वचन दे दे तो रोग दूर हो जाएगा, हमारे व्यापार में लाभ हो जाएगा, हमारे को मिल जाए, भगवान से कहे तो भगवान मेरे बेटी की सगाई हो जाए, बताओ क्या करें। जहां जाए हुआ है खाऊं 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 करता ही रहता हरदम, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, पड़ोसी से भी मेरे को मिल जाए, बात से भी मेरे को मिल जाए, व्याख्यान से भी मेरे को मिल जाए, सुनने से भी मेरे को मिल जाए, सुनाने से भी मेरे को मिल जाए, ये बहुत बड़ी भारी दरिद्रता है। और जिस दिन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे से तो सेवा हो जाए, किसी की सेवा बन जाए, पशु पक्षी की, मनुष्य की, किसी की भी मेरे से सेवा बन जाए, मेरे से कोई काम ले ले, ऐसा हो जाए तो निहाल हो जाए। परंतु ये बात अटकले याद नहीं है, ये युक्ति सीखी नहीं भाई अभी तक, अगर इसको सीख ले तो निहाल हो जाए सच्ची। लोगों का बहम होता है कि लेगा नहीं, देगा ही देगा तो कहां से आएगा, अरे लेता है तब ना देता है, ले ही नहीं, ले ही देवे क्या, ये बड़ी भारी मूर्खता है। अरे नहीं लेता है वो ही देता है, लेता है वो देता क्या है, लेने वाला देता है तो ही लेता है, लेता है तो ही लेता है, और देने वाला ये हृदय में भाव है तो लेता है तो ही देता है, देता है तो ही देता है, उसे लड़े है ही नहीं। संसार से विरक्त होते हैं, त्यागी होते हैं, जो जिसके मन में किंचित मात्र भी लेने की इच्छा नहीं है, वे लोग लेते हैं, रोटी खाते हैं, कपड़ा लेते हैं, मकान लेते हैं, पुस्तक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो वे देते हैं। परेशानी सी क्या है कि जो श्रद्धालु भक्त होते हैं वो दे करके निहाल होते हैं कि बड़ी कृपा कर दी महात्मा जी ने, मेरी चीज ले ली, अरे ले ली कृपा करी है कि ले ली कृपा करी, लड़े हुई कृपा क्या हुई, और वे समझते हैं कि कृपा कर दी हमारे पर, तो कृपा कर दी क्या देते हैं वो, अनंत गुणा पुण्य होता है, अनंत गुणी सिद्धि निर्मलता होती है, चीज थोड़ी लेते हैं, मूल्य कितना देते हैं जिसका कोई पार नहीं है, अनंत मूल्य देते हैं, इस वास्ते उनकी देना ही देना रहता है। इस वास्ते कहा कि स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्द नाही, सुपने सुपने परमार्द नहीं, रहे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, एक तो भगवान, एक भगवान के सेवक, वे बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं, और एक विचित्र बात है कि उनमें हित करने का भाव पैदा नहीं होता, जैसे सूर्य भगवान आते हैं तो जिस भाग में आए उसी भाग में दिन हो जाता, भूमंडल के उस भाग में दिन हो जाता, प्रकाश हो जाता, अंधकार दूर हो जाता है, मगर सूर्य के अभिमान नहीं होता कि मैं आकर के दिन कर देता हूँ, रात्रि दूर कर देता हूँ। एक कहानी आती है कि अंधेरे ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज ये सूर्य भगवान हमारे को टिकने नहीं देते, जिधर मैं जाऊं उधर आ जाऊं, उधर से भागता हूं, उधर धाऊं, पीछे पीछे भागते रहते, मेरे को टिकने ही नहीं देते। सूर्य को बुलाकर कहा, अरे बेचारे अंधेरे के पीछे क्यों पड़ा है, इसलिए कहते महाराज मैंने देखा ही नहीं है मेरे को, आप कहते हो बैठ, मैंने उम्र में कभी नहीं देखा उसको, बैठ गया हो, हमारे क्या विरोध है, अब लाओ उसको, वो शिकायत करने वाले को, अब लाओ क्या, सूर्य को हम टिकता ही नहीं, वो ठहरता ही नहीं, तो उसके मन में ही नहीं कि मैं प्रकाश करता हूं, अंधेरे का नाश करता हूं, अभिमान नहीं है, वो तो स्वतः ही प्रकाश होता है, ऐसे भगवान के भगवान के भक्तों के द्वारा स्वतः ही भला होता है, वहाँ करने का अभिमान होता ही नहीं। अरे अभिमान होता है मैं भला कर रहा हूँ, मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, वहाँ महाराज डबल अज्ञानी है। एक अज्ञान तो है ही, फिर ज्ञानी मानता है, ये दुगुना अज्ञान है, ये होता ही नहीं कभी। उसके द्वारा होता है, और वो भगवान की शक्ति जागृत तभी होती जब अभिमान नहीं होता। तो भगवान के तो अभिमान द्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वात् च, अभिमान से भगवान के द्वेष है, क्योंकि अभिमान से आदमी का पतन होता है। संसति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना, इस वास्ते आज दम्भोदर को अभिमान साया। ताते करहिं कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। तो भगवान के भजन में लगने वालों का अभिमान दूर कर देते हैं भगवान। अरे अपने प्यारे से प्यारे नारद जी महाराज, जिनके मन में आ गई कि मेरा ब्याह हो जाए, और भगवान से प्रार्थना की, प्रार्थना करते ही प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा बस 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 काम बन गया, कहते ही भगवान आ गए, अब तुम्हारा काम बनेगा ही। कह दिया महाराज जी मेरी हो ना थे तो मोरा करो तो बैठ जल्दी करो महाराज, क्यों दास मैं तोरा, आपका दास हूं। भगवान जी तो बहुत ठीक है, जय विधि वो ही है परमित, तुम तो कह तो हम करें परमित करेंगे तुम्हारा। नारद सुनो सुनो ध्यान दो मेरी बात पर, जय विधि वो ही परमित नारद सुनो तुम्हार सो मैं करवन आन कसु बचन मिर्षा हमार। जुड़ी बोलता हूँ बेचारे की बेइज्जती कर दी, मरकट बदन भयंकर दे, ऐसा बता दिया। अब उसमें भगवान शंकर के गण देखते हैं, वाह साहब वाह बढ़िया दी भगवान ने, सुंदर तो बढ़िया दी आप, हंसे मस्करी करते हैं, उसे समझ में नहीं आता। तब तो कहा जरा थोड़ा दर्पण में देख तो लो मुख। अब दर्पण बाबा जी कहाँ लगा बेचारे, पानी में जाकर देखा, देखा तो मिला वह भयंकर रूप अपना। वो देखा अब बताए क्रोध भगवान पर आया, होठ फरकने लगे, देहूं साहब के मरू जाई, जगत मोरी उपहास कराई, मेरी हासी करा दी। तो हासी तो आपने कर ली स्वयं मारा। एक कथा मैंने सुनी, उसमें सुनी बात के भगवान ने नारद जी के बंदर बनाया, काले मुंह का बनाया। काले मुंह का क्यों बनाया, कि त्यागी होकर ब्याह करना चाहे तो वे लाल मुख होगा, काले मुख ही होगा, ऐसी करी। तो भगवान कायदा नहीं रखते, नारद जी का ही बेचारे तुम्हारे से वरदान मांगते हैं, अब इतने पर भी तुम उनकी बेइज्जती करते हो। और भगवान की बेइज्जती होती नहीं, उनके है नहीं उस माना अपमान तुली तुली में है नहीं। इस बार नारद जी ने कहा कि महाराज आप तो परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई, आप पर सिर पर कोई नहीं, आप पर स्वतंत्र हो। तो सिर पर कोई नहीं तो बंदर बगा दिए, भगवान को तो कह दिया कि तुम तो राजा हो गए, तुम स्त्री के लिए रोते फिरोगे, तुम्हारे मेरा जो हमने हमारी आकृति बनाई है वो करी है किस सहाय तुम्हारी, वो किस बंदर सहायता करें, पर सूर्य कोई है नहीं है तुम्हारा प्रभु पर उतर, अरे कभी डार पर ऊपर कुछ लटका है, सिर पर कोई नहीं तो हजारों में बैठे ऊपर। नारद जी ने कह दिया आप पर सिर पर कोई नहीं है ना, अब सिर पर रहेंगे कोई नहीं कह रहा था, समुदाय का समुदाय रहेगा। तो नारद जी ने इच्छा कर ली, और इच्छा क्यों हुई, अभिमान हो गया, अभिमान जितेऊ काम हम इति अति भारी, बड़ी भाड़ा अहंकार में काम दे जीत गया, अभिमान हुआ तो भगवान ने फजीती कर दी। तो अभिमान होता नहीं संतों में, हो जाए तो दूर कर देते, भगवान रहने नहीं देते। अरे रावण का अभिमान वर्षों रहा, अब भगवान ने दूर नहीं किया। नारद जी के बेचारे एक बार आया मन में, जिसमें बड़ी फजीती कर दी, ये बीमारी क्यों भाई हमारे भक्तों की, ये कैसे आ गई आप। इस वास्ते उनमें कल्याण कर लेना, हित कर देना, उद्धार कर देना का अभिमान होता ही नहीं, क्योंकि वो करते ही नहीं, उनमें करती तो है ही नहीं कि हम कर दें, आप जहां होता है इस बात कोई अभिमान नहीं होता। तो क्योंकि कामना है नहीं, काम आश्रित दुष्पूरम दम्भमान मदान्विता, दुष्पुर काम का लेकर के इस बात चिंताम अपरिमेय प्रलयांताम उपाश्रिता अपरिमेय है अपरिमेय जिसका कोई परिमाण नहीं जिसका परिमाण मापतोल नहीं चिंताम अपरिमेय अरे प्रलयांताम कहां तक रहे थी मर जाए तब तक नहीं छूटती चिंता नहीं छूटती चिंता चिंता में ही मर जाते चिंता को लेकर ही मरते हैं छूटती नहीं क्योंकि संसार के पदार्थ को लेकर चिंता होती है परिवार को लेकर चिंता होती है शरीर को लेकर चिंता होती है जो चिंता नाशवान को लेकर अब उसका उसका पूर्ति कैसे हो और कामोपभोग परमा संसार के पदार्थ रूपये इकट्ठे करना और सुख भोगना एतद परमा इसके परायण होते इसके सिवा और कुछ है ही नहीं कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता संसार में इतना ही है क्या रुपये कमाना भोग भोगना हम सब जानते हैं हमारे को सब पता है ये बड़े बड़े संत महात्मा सब दुकान है सब रुपया कमाने की दुकान है भोग भोगने की दुकान है तो त्यागी होते त्यागी हम जानते हैं त्यागी होते हैं एक जगह बात सुनी हमने लोगों ने कहा ये त्यागी ये रुपया नहीं लेते रुपया एक दो नहीं लेते सौ रुपया दे देते हैं नहीं लेते एक दो नहीं लेते पैसा नहीं लेते पैसा नहीं लेते रुपया लेते रुपया लेते हैं तो एक दो चार नहीं लेते सौ दो सौ पांच सौ हजार रुपया ला दो ले कोई हो ही नहीं सकता ऐसा रुपया नहीं लेते होता है कभी समझ में नहीं अक्कल में नहीं आ सकती अर कहते हैं तो विरक्त है त्यागी कोई विचार भी पक्का हो जाए तो इनको क्या पता रुपये में काम चलता ही नहीं मान ये त्यागी विरक्त तो साफ मूर्ख है लंच है साफ रुपया पे रुपये में काम चले रुपये में काम ही कैसे चले वो तो त्यागी थे ठीक है उनके रुपया नहीं चाहिए पर रुपये में काम कैसे चले रुपये काम क्या चलाना मरना जन्मा जन्मना मरना 84 लाख जोड़ी भुगतना ये काम चलेगा नहीं बिना रुपये के नहीं चलेगा बिल्कुल हम तो आप कहते हैं भाई चलते ही जाओ पैदा हो चलो चलो भाई चलते ही रहेंगे मरते ही रहेंगे काम कैसे चलेगा रुपये बिना कामना के बिना चलेगा कैसे बंद हो जाएगा परमात्मा तो प्राप्ति हो जाएगी बंद हो जाएगा काम कैसे चलेगा हम भी कहते काम नहीं चलेगा भाई पर चलेगा ये नर काम पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजनन शयनम संसारे दुसुदुसारे पाए मुरारे कृपया भाई चलो भाई ये बात अक्ल में नहीं आ सकती ये बात बैठ नहीं सकती ऐसी बात भी होती है सच्ची बात देखी जाए तो भाई कहने में संकोच तो होता है पर आ गई आज याद संसार में रुपया जैसी गंदी चीज कोई नहीं है ये समझ में कैसे आओ गुलाम बना ही लेगी ये ऐसी चीज है गुलाम बना लेगी दास बना लेगी पराधीन बना लेगी जगह जगह गुलामी करनी पड़ेगी गर्द गधे को बाप करे अच्छा आ गई चिंता मिटी देखो अन्न बिना काम नहीं चलेगा मानो जी नहीं सकता जल बिना जी नहीं सकता कपड़े बिना मुश्किल हो जाएगी मकान बिना मुश्किल हो जाएगी सवारी बिना मुश्किल हो जाएगी रुपया उम्र भर में छुओ मत देखो मत ये चीज दे दो जी जाएगा और ये चीजें संबंध कर दो रुपये रुपये में खड़ा कर दो बूर दो तो जी सके दो कोई जी सकेगा हजारों लाखों करोड़ों रुपयों के बीच में खड़ा कर दे अन्न बंद जड़ बंद हवा भी बंद श्वास लेने के लिए हवा भी नहीं भाई ये नहीं रुपये बिना कहा वरीबों चलाओ राम नाम से बोल जाएगी जी नहीं सकेगा तो रुपया तो एक वस्तुओं के प्राप्त करने का माध्यम है ये सर्वोपरि थोड़ा ही है पर अक्ल इतनी मारी गई रुपयों के लिए भक्त पर खा नहीं सकते भक्त पर सो नहीं सकते भक्त पर बात नहीं कर सकते दूसरे से भक्त है नहीं अरे कमाने में रुपया ही रुपया कमाना है बस अब उनकी अकल तो मारी गई उसको कौन समझाए मैंने यहां समझाए वही उसी ढंग के अब वही उसी के दास वही उसी के दास जगत वेख एक मत हो एक मत जिस जावे चलो इस वास्ते कामोपभोग परमा सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उपभोग करना उसे रस लेना आनंद लेना रुपया कमाना रस लेना बस एतावती निश्चिता आशा पास सतैर बद्धा सैकड़ों आशाओं की फांसी होगी उसे मिल जाएगा वहां मान हो जाएगा वहां बढ़ाई हो जाएगा उसे नाम हो जाएगा, रुपया मिल जाएगा, मकान बन जाएगा, इतना वो हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा। अर काम क्रोध परायण, जैसे भक्त भगवान के परायण होते हैं और काम क्रोध के परायण होते हैं, हरदम रुपया के परायण। इहंते काम भोगार्थम अन्याय नर संचयान, काम भोगार्थम सुख भोगने के लिए अन्याय अर्थ संचयान, इहंते अन्याय पूर्व धन का संग्रह करने के, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके ब्लैक करके किसी से पैसा इकट्ठा करना, ये नहीं सोचते कि पैसा इकट्ठा बाहर हो रहा है, पापों का संग्रह भीतर हो रहा है, मरोगे तो पापों से एक कौड़ी पीछे रहेगी नहीं पापों में से, और पैसे में से एक कौड़ी साथ चलेगी नहीं, पैसे यहाँ रहेंगे पाप साथ चलेंगे, जिन पैसों के लिए पाप किया महान कष्ट दुख भागना पाना पड़ेगा, परंतु रुपये के लोभ में ऐसी बुद्धि मारी गई ये बात सूझ नहीं रही, ये अकल भी नहीं आती बात है। संसार में अपने भाई बंधु कुटुंबी से, अरे ससुरे जमाई की लड़ाई हो जाए, भाई भाई की लड़ाई हो जाए, बाप बेटे की लड़ाई हो जाए, सासू बहू की लड़ाई हो जाए रुपये पैसों के लिए, कई के साथ प्रेम रह सके नहीं, मेरे को मिलना चाहिए वो तो मेरे को मिलना चाहिए, अरे परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो जाए तो प्रेम हो जाए, अनजान आदमी को प्रेम हो जाए, जहां भगवत भक्ति देखी भजन देखा रो मस्त हो जाए तो तुम भी भजन करो, हम भी कीर्तन करो, भगवान के नाम लो, प्रेम हो जाए मोज, क्योंकि एक जाति के हो गए सब, ऐसा चाह ना एक जाति में भी लड़ाई देंगे, प्रत्यक्ष बात है परंतु कुछ ख्याल कर समझ ले, नहीं समझ कह दो सुनो चले वही कथा में सुना के सुनाने के समय बात आ जाए, परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति ही, दूसरों को उपदेश देना उस समय तो बड़े पंडित हो जाते हैं, पर विस्मरन्ति यह शिष्टत्व स्वकार्य समुपस्थित, अपने काम पड़े तो भूल जाते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नरन घनेरे, कहते समय बहुत विद्या आती है, बहुत मेरे को बहुत बातें आती है, कहते समय सुनाते हैं उसे बहुत बढ़िया बढ़िया पंडित की बातें आ जाती है, क्योंकि औरों को सुनाना है दूसरों को समझाना है, दूसरों को समझाना किस लिए, हमारी वाह वाह हो जाए, दूसरों थोड़ी मतलब है उसी, हमारा मान हो जाए, आदर हो जाए, सत्कार हो जाए, सुनाने लगे सुख से जीते। एक संत थे, हम लोग गए थे बांकुड़ा, चक्रधर जी हमारे साथ थे, गोविंदकारी ने पूछा कि क्यों चक्रधर जी कैसा है, सत्संग में कैसा प्रचार होता है, कहते एक फायदा तो प्रत्यक्ष देखा आपने, क्या भिक्षा बड़ी सुगमता से मिल जाती, व्याख्यान देने से भिक्षा सुगमता से मिल जाती, ये प्रत्यक्ष लाभ होता, नहीं तो रोटी नहीं दे, नहीं तो गर्ज कर दे, ये लाभ है साहब। आशा पार्षतैर्बद्धाः कामक्रोध परायणाः इहंते काम भोगार्थम अन्यायेन असंशयान, अन्याय पूर्वक संशय करेंगे, पैसा आना चाहिए, न्याय अन्याय कुछ भी हो आंख मिच जाती, आंख लोभ आता है ना, तो बाजार में देखा है ना, माल रहती है साग की टोकरी भरी हुई, गाय दूर से देखती हरी हरी घास बड़ी अच्छी है खाल, उसके मन में आती है तो दूर से आती है, वो मालिन साग वो रखती है अपने पास में लाठी, गाय पास में आकर मुंह मारने लगती तो लाठी उठाती, लाठी उठाती गाय आंख मिच लेती, अब आंख मिचने से लाठी बच जाएगी, मुंह तो मार ही ले लंबा पड़ जाता है, ऐसे ये बातें सब याद रहती, सुनते सुनाते समय में दुकान पर बैठते रुपया सामने देखता खाया उनके आंख मिच जाती है, ये सब मिच जाते हैं, देख नहीं सकते, अब आंख में जैसे डंडा बचेगा क्या, वो तो पड़ेगा ही, तो देखेंगे नहीं, बस देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं लाठी तब देख तो घास खा नहीं रहती, डर लगेगा, इस बात बस हल्ला मत करो, बस कोई सुनो भी मत, सर कहते हुए सुनाते हैं उनको पता नहीं आजकल का जमाने क्या है, लोग क्या है, किस प्रकार जा रहे हैं, ये पुराना आदमी नहीं डरते कुछ नहीं, जानते नहीं समझे नहीं, ये समझ समझ इकट्ठी हुई है इस जगह आकर, समझ जा कामो भोग परमा है, तो अन्याय न संजया नहीं अंधी, अन्याय पूर्व धन संग्रह करना चाहते हैं, संग्रह कर ले बस संग्रह। जोरी जोरी धन कृपन जन मान रहे मन मोद, जोरी जोरी धन कृपन जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जब मूढ़ मन गिरत काल की गोद। मधुमाखी इकट्ठा करती है, जो जाल देते हैं, वो अंधेर ले जाते हैं, आत्मसल रह जाती है, जय राम जी की ये दशा होती, धन सबका सब यहाँ रह जाता है, मृत्यु समय बड़ी दुर्दशा होती। अब धन की तरफ दृष्टि जाती, जिन भाई बंधु कुटुंबियों को चाबी नहीं देते थे महाराज, बताते नहीं थे, उनके हाथ में चाबी आ गई, बोल सकते नहीं, प्राण जा रहे हैं, संगत का वो ही जा रहे, दूसरा संगत का अनुभव कर नहीं सकते, अब क्या करें बताओ। जिनको बताना नहीं चाहते उनके हाथ में चाबी की सब की सब, अब अग्नि जो पास में कुछ है ही नहीं, मौज से रहोगा तो मरता भी बड़े मौज से है, रहता भी बड़े मौज से आनंद से। इसका अर्थ ये नहीं है कि धन खराब चीज है, ध्यान देना जरा। अरे उपयोग सबका बढ़िया होता है, मैंने कहा कि बीमारी का भी उपयोग करो कल्याण हो जाए, दरिद्रता का उपयोग करो कल्याण हो जाए, तो धन का उपयोग करने से कल्याण नहीं होगा, पर अभिमान करोगे तो पतन होगा भाई। विद्या का अभिमान करो पतन होगा, विद्या विवाद आय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय कलस्य साधोर विपरीत में तद ज्ञान आय दानाय संरक्षणाय। तो जो परिस्थिति है, जो बात है, जो वस्तु है, जो परिवार है, जो कुछ मिला है, वो सब का सब आपके कल्याण की सामग्री है, उद्धार की सामग्री है, उसका सदुपयोग करने से कल्याण होगा, दुरुपयोग करने से पतन होगा। सदुपयोग दुरुपयोग करना मनुष्य को आता है, पशु को सिखा नहीं सकते आप, पक्षी को सिखा नहीं सकते, वृक्षों को सिखा नहीं सकते, और मनुष्य सीख सकता है, ये तो सीधी जाती बात है, एकदम सबके सामने की बात। हरेक से खाऊं 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 खाऊ मिल जाओ मेरे खा जाओ, राम 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 राम, ये कोई मनुष्य बने? सेवा करो, भगवान ने बुद्धि दी है तो सेवा करो, तो 84 लाख जूने की सेवा करने के लिए मनुष्य बनाया गया। आज कहते मनुष्य के लिए सब बनाया गया, मार खा जाओ, सब मनुष्य के लिए बनाया गया, ये बिल्कुल गलती की बात है। योग्य होता है वो प्रवृत्ति प्रबंध करने के लिए, प्रवृत्ति करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए होता है बुद्धिमान। घर में भी ज्यादा बुद्धिमान होते तो उसमें जिम्मेवारी घर मात्र की जिम्मेवारी होती है, ऐसे जीव मात्र की रक्षा करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है, जो मनुष्य कर सकता है, और वो ही खाने लगे तो रक्षा कौन करेगा, दशा ही हो रही है। कारण के काम आश्रित दुष्पूर है, मूल में यहां हो गया ना, अन्याय नर संशय। वो कल बताई थी एक संतों की कथा सुनने को मैं गया, तो ये कथा हो रही थी 16 अध्याय की, तो कहते वे ऐसा है, वे भी भजन ध्यान करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, यदि मध्य में आलब्धम एवं प्राप्त मनोरथम यदि मस्ती भविष्य पुनर्धरम असोमया शत्रु धनिषे चापर नवी सुरहम हम भोगी सिद्धोम बलवान सुगी आद्यो भी रमी को ये माला पे बैठ एकांत जप करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, इधर मध्य बयाल लिखते, इतना धन तो आ ही गया अपने, तो इतना बैंक में जमा है ही, इतना ब्याज आ ही जाएगा, अरे इतना तो हमें छोरे का संबंध करे में उसमें आ जाएगा धन, इतना तो इतना व्यापार में आ जाएगा, इतना ब्याज में आ जाएगा, इतना मकान का किराया आ जाएगा, माला फेरते किसकी माला फेरते हैं, धन की ऊपर देखे राम 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 गायत्री जपते हैं। ये भजन होता है, भगवान के भक्त होते हैं उनका भजन हरदम होता है, भगवान की तरफ ही लौ लगी रहती है। काम धंधा करे तो, भजन स्मरण करे तो, दान पुण्य करे तो, उपकार करे तो, सेवा करे तो, चीज वस्तु खरीदे लावे, घर का प्रबंध करे तो, भगवान को याद रखते कर, सर्वे सुखाले सुमा मनोस्मर और युद्ध भक्त भक्त पर काम कर। अर्जुन के सामने युद्ध था, इस वास्ते यहाँ जिसके सामने जो कर्तव्य है वो काम करो, पर सर्वे सुखाले सुमा मनुस्मर, सब समय में तो भगवान का स्मरण है, सब समय में युद्ध थोड़ा ही होगा। सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर युद्धे च, सर्वेषु कालेषु युद्ध होता नहीं, सब कार्य भगवान का समान है, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान के साथ लगे हुए हैं। ये सदा साथ रहेगा, धन कभी साथ नहीं रहता, महाराज कभी साथ नहीं रहता, शरीर साथ नहीं रहा, सामग्री साथ नहीं रहती, चलते चलते आते आते चला जाता है। धन के लिए महाराज धर्म का त्याग किया, झूठ गवट बेईमानी करी, ईमानदारी का नाश किया, सज्जनों से बैर कर लिया, और फिर जाता हुआ सम्मति नहीं पूछते रुपया खटल जाते, क्या करें, घाटा लग गया, क्या करें, रो क्या करेगा। जिस धन के लिए इतना अन्याय किया वो धन पूछेगा नहीं, सम्मति नहीं लेगा, चला जाएगा। और भगवान के लिए करते क्या, भगवान ऐसा धोखा देते, सच्चे हृदय से भगवान का भजन करते, हे नाथ करते, तो क्या ये दशा होती। भगवान तो महान कृपा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर अवसर दे रहे हैं, ऐसे प्रभु को तो याद करते नहीं और पैसों को याद करते हैं। कामो भोग परम, ये आसली संपत्ति, कैसी संपत्ति रह गया। ऐश्वास्य मनोरथ यही चलता है, इतना धन मिल गया। कामोपभोग परमा कहा है ना, उसकी व्याख्या है, अन्याय संचयान ईहंते, उसकी व्याख्या है। इद मध्य में आलब्धम और काम क्रोध परायणा असोमय शत्रु बना नी, ये काम का इद मध्य में आलब्धम भविष्य मनोरथनम, इतना धन अपने पास पड़ा है ही, इतना तो रोकड़ में है, इतना ब्याज में दिया हुआ है, इतना वहां से आ जाएगा, इतना वहां से आ जाएगा। अरे भाई छोरा छोरी का ब्याह करेंगे, छोरेगा तो इसके ननाने वाले भी ऐसे धनी है जो इतना तो महारा देंगे, कम से कम धंधा हो गई, वो देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं है, पर तो डाकीपना तो खाऊं तो वह बात है, वैसी की वैसी हजारों लाखों करोड़ों रुपये अपने पास में है परंतु भूख नहीं मिलती, भोग तो वही खाऊं कर। अरे असोमय हत शत्रु, देखो मेरे साथ में दो हाथ के, देखो देखा ना खत्म कर दिया उसको, असोमय हत शत्रु हनीषे चा अपरा ना भी, और जितने गए उनको देखते देखते नम देखना तमाशा खत्म कर देंगे। ईश्वर हम समर्थ है को ना हमारे समान दूसरा, हम भोगी जितने भोग है हमारे पास आते हैं, सिद्धो हम बोलो, आपको कहा था कि नहीं ऐसा कर देंगे, हुआ कि नहीं हुआ, हमें पहले पता लगता, सब बताओ पता है ऐसा होगा, देख लेना तमाशा, क्यों बलवान हूं मैं, मेरे से हड़कर कोई ठहरा टिका मेरे सामने, सुख जितने जो मेरे पास आते हैं सब, धनवान आदि अभिधनवान है, उसने एक आवाज में सैकड़ों आदमी मेरी आवाज सुनने वाले, सब तैयार हो जाए, मरने की तैयार है। विरोध ने कहा मदर से त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहणा सर्वे युद्ध विचार था, मदर से त्यक्त जीविता क्या समझे, युधिष्ठिर नहीं कहा, अर्जुन ने नहीं कहा, विरोध ने कहा ऐसे ऐसे हमारे साथ में, हमारे को कम है क्या। इस बात ईश्वरों हम हम भोगी सिद्धों हम बलवान सुखी आज जो विजनवान अस्मी कौन जो सी सरुषो मया, आपने भी कहीं देखा पर मेरे समान देखा आपने, बताओ करो याद कोई है तो तुम्हारे हम जो कुछ समझे नहीं हूं, कौन जो सी सरुषो मया, मया सरिषा का अन्य बताइए, कहते ये तो क्या बड़ी यज्ञ दान था, यज्ञ यज्ञ करेंगे देखना तमाशा, हाँ तब करेंगे, ये जितनी यज्ञ करने वाले सब टांग फेर देंगे, अरे टांग फेरोगे यज्ञ करोगे, दास्या में दान करेंगे पुण्य करेंगे देखना तमाशा, हमें तो मामूली के दान दे दिया धन दे दिया, थोड़ी है अखबारों में नाम निकलेगा, लोगों में ऐसा प्रचार होगा, इतना दान दिया उसने, ऐसा किया ऐसा किया, यक्षे दास्यामी मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता, अभ्यास यज्ञ करने वाला अज्ञान होता है, यक्षे दास्यामी मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहित है, देंगे करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अरे करेंगे करेंगे फिर मरेंगे हो जाएंगे तो, और करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, मरेंगे जरूर होगी, मन वो तो करने का विचार फिर करेंगे अभी। एक आता है कभी तो, एक अजमेर के राजा थे, तो अजमेर के राजा थे, उसने विचार किया कि हम दान करेंगे, और उसका छोटा भाई था वो दान करना शुरू कर दिया। तो एक आने की मिट्टी निकाल देना तालाब से, जो आज बगीचा बना वो आना सागर है, आना सागर उसका नाम, आना सागर बहुत बड़ा तालाब, और मिट्टी भर गया बहुत। एक आने की मिट्टी निकल रही रोज ही, एक आने का वो विषय दे था हमारा बड़े भाई, उसने कहा कि हम यू मामूली एक दो पैसा का दान नहीं करेंगे, आने दो, आने दान क्या करें। 20 करोड़ इकट्ठे किए रुपये पुराने जमाने में, तो 20 करोड़ इकट्ठे किए तो कहाँ रखें, तो चोरी हो जाएगी। तो एक संत ने उनको चमत्कारी एक मंत्र करके काठ का टुकड़ा दिया, तो वो जावे महान गहरे पानी में, तो वो ऐसे करते ही पानी फट जाए, उस पानी में नीचे जाकर के वो रखा रुपये, सोना और चांदी रुपये रख दिया। तो वो गाड़ी जगह गमानी, 20 करोड़ बिछड़ने वाले पड़ गई ऊंडे पानी, लुगाई मर गई। दूसरा ब्याह हुआ, वो आई छोरी, उसने देखा कि वो रोजाना पूजा